ये आकाशवाणी दिल्ली है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा करने के लिए बनाएगी योजना। मजलिस से अजा के अवसर पर राजधानी के नूरनगर क्षेत्र में आलम मुबारक के जुलूस को लेकर दिल्ली पुलिस ने यातायात निर्देशिका जारी की। और एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख का पदभार संभाला। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए।
राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन न्याय सबके द्वारा पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे लगता है इसी तरह के आयोजन हर दो महीने में या तीन महीने में होना चाहिए। हमारे पास इतने सारे पेंडेंसी है, शायद ऐसे करने से उस तरह के समस्या से हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर सकते हैं।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि न्याय प्रणाली का एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके, ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें।
भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों में कमी लाने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्य योजना लाने की रूपरेखा तैयार की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न की है। इसमें लगभग 1000 मामलों को 5 कार्य दिवस के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया गया।
The Supreme Court of India recently concluded its first ever national Lok Adalat, at which almost 1,000 cases were disposed of amicably within a course of 5 working days. There is no reason for cases which can be settled between the parties to languish before the courts for lengthy periods of time. The courts undoubtedly are a forum for upholding the rule of law and dispensing justice under the law.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न संभावनाएं तलाश रही है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। डॉ मांडविया ने कहा कि सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति पर काम कर रही है। गिग श्रमिक वो होता है जो छोटी अवधि के लिए या परियोजना आधारित काम करता है और एक ही नियोक्ता के लिए काम करने की बजाय कई नियोक्ताओं के लिए काम करता है। डॉ मांडविया ने कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों के साथ ऐसे श्रमिक काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि मंत्रालय इस संबंध में सभी पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस वर्ष मई में नई दिल्ली में आयोजित हुई भारत कौशल राष्ट्रीय प्रतियोगिता से चयनित हुए 60 भारतीय प्रतिभागी फ्रांस के लियोन में होने जा रही विश्व कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में जा रहे भारतीय दल के प्रतिभागियों को कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी 6 सितंबर को रवाना करेंगे। मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा है कि भारतीय दल में शामिल प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त है। देशभर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह हर वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पोषण सप्ताह का उद्देश्य जनता के बीच पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है, जो उत्पादकता, आर्थिक विकास और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोगों को शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक विभिन्न आयु समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित भी करना है। इस सप्ताह के दौरान सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रमुख जोर दिया जाएगा। पोषण सप्ताह के दौरान देश भर में कई सेमिनार, कार्यशालाएं, शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों को लोगों को संतुलित आहार बनाए रखने के लाभों, उचित पोषण के सकारात्मक प्रभाव, खराब आहार संबंधी आदतों से जुड़ी बीमारियों को रोकने के तरीकों और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की रणनीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा की योजना बना रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में एक प्रेस वार्ता में रेखांकित किया कि नवंबर के महीने में उत्तर भारत और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिसके निपटारे के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम वर्षा के लिए सरकार, नागर विमानन महानिदेशालय DGCA, केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई विभागों से अनुमति लेगी। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे अगस्त में बारिश होने के कारण दिल्ली का प्रदूषण स्तर काफी कम रहा, जिसे देखते हुए सरकार सर्दियों में कृत्रिम वर्षा कराना चाहती है।
नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता है। उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसको लेकर के पिछले साल IIT कानपुर के एनवायरमेंट साइंसिस्ट ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा था कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीटिंग का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है।
श्री राय ने कहा कि सरकार पिछले वर्ष से लगातार काम कर रही है, लेकिन इस बार भी वो शीतकालीन कार्य योजना बना रही है, जिसे सरकार 5 सितंबर को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने भाजपा और कांग्रेस को सुझावों के लिए चिट्ठी लिख निवेदन भी किया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्री ने केंद्र सरकार से भी सहायता की मांग की है। वहीं शीतकालीन कार्य योजना पर अन्य दल असहमत दिखे। शीतकालीन कार्य योजना की आलोचना करते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दावा किया कि कार्य योजना पुरानी, खोखली और बेबुनियाद है, जिसे दिल्ली सरकार पिछले 10 सालों से दोहरा रही है। श्री यादव ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार इस मामले में दूसरी पार्टियों से विचार विमर्श करना चाहती है तो उन्हें प्रदूषण सहित जल भराव, सड़कों की हालत, नालों की स्थिति, जल संकट, महिलाओं की परेशानियों और बिजली बिलों में बढ़ोतरी सहित जनता से जुड़े मुद्दों पर भी संबंधित मंत्रियों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदूषण से जुड़े सवालों का जवाब देने में सरकार असक्षम रही है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सरकार को कृत्रिम बारिश से पहले पराली जलाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में नागरिकों की समस्याओं को रेखांकित करने के लिए भाजपा ने आज राजधानी की 254 झुग्गी और सेवा बस्तियों में दिल्ली सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ भाजपा सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों, पार्षदों और नेताओं ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उठाया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध तख्तियां और बैनर दिखाकर नारेबाजी की। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि झुग्गी और सेवा बस्ती के नागरिक वास्तव में दिल्ली के विकास की नींव हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री सचदेवा ने कहा कि ये काफी खेदपूर्ण है कि दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए वायदों के बावजूद भी यहां के निवासी दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी यहां की जीवन परिस्थितियों में सार्थक परिवर्तन लाने का काम करती रहेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज नजफगढ़ के दिचाऊ कला और खैरा गांव में 1 करोड़ रूपये की लागत की PNG पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। सरकार ने बताया कि दो महीने के अंदर पाइपलाइन बिछाने के कार्य सहित दोनों गांवों में घरों में पीएनजी कनेक्शन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कहा कि अगले मार्च तक नजफगढ़ में 21 गांवों और 200 कॉलोनियों में पीएनजी पाइपलाइन लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि गैस कनेक्शन का ये पाइपलाइन नजफगढ़ में विकास और प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में नजफगढ़ विधानसभा की कई कॉलोनियों और गांवों को पाइप गैस लाइन से जोड़ा गया है। उन्होंने आशा जताई कि अगले एक वर्ष में नजफगढ़ बाकी सभी कॉलोनियों और गांवों में पाइपलाइन गैस सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने तथा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि किसी भी सामान या सेवाओं के संबंध में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं किया जाए। एक रिपोर्ट।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने शंकर आईएएस अकादमी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। सीसीपीए ने पाया कि शंकर आईएएस अकादमी ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन किया, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 में विज्ञापित सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी जानबूझकर विज्ञापन में छिपाई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कोचिंग संस्थान के विज्ञापन में कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई। इसमें कहा गया कि इस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापन उन उपभोक्ताओं पर भारी प्रभाव डालते हैं जो यूपीएससी के उम्मीदवार हैं। उन्हें यह बताए बिना कि उम्मीदवारों की सफलता में शंकर आईएएस अकादमी की भूमिका है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन ने उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सूचित होने और सुरक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन किया है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
मजलिसे अजा के अवसर पर राजधानी के नूरनगर क्षेत्र में आलम मुबारक के जुलूस को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज यातायात निर्देशिका जारी की है। पुलिस ने बताया कि जुलूस के कारण दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक सराय जुलेना से जामिया मेट्रो, कालिंदी कुंज से जामिया और भारतनगर से बाटला हाउस तक यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने लोगों को इन मार्गों के बजाय सराय जुलेना ओखला रोड से कालिंदी कुंज तक के रास्ते को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली प्रीमियर लीग में आज नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 61 रन से हराया। नॉर्थ दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 209 रन बनाए। यश डबास ने 68 और वैभव रावल ने 56 रन की धुआंधार पारी खेली। जवाब में साउथ दिल्ली 148 रन बनाकर आउट हो गई। नॉर्थ दिल्ली के लिए सिद्धार्थ सोलंकी ने 5 विकेट लिये। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस को आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि सुश्री फ्रांसिस दिल्ली विकास प्राधिकरण के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभ्यास करती हैं और उनके इस जुड़ाव ने उनकी जीत को दिल्ली के लिए और भी खास बना दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा करने के लिए योजना बनाएगी। मजलिस ए अजा के अवसर पर राजधानी के नूरनगर क्षेत्र में आलम मुबारक के जुलूस को लेकर दिल्ली पुलिस ने यातायात निर्देशिका जारी की और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।